जायाधान किये कम कलं कडहे नीच निरंजन नान मऊ हे परमात्मनवे।
जहि भावै तहि जाहि जिय जम भावै करितं जि के मै मोखुन आति पर चेत शुद्धि न जंजे। यत्र भाति तत्र याहि जहाँ अच्छा लगता वहां जाओ। नाम है, भाव है, कौन सा कैसा है भाव? एक एव अद्वितीय है, विशुद्ध है, एकमात्र अपूर्व है और विशुद्ध है। यह तस्मात् भावात् निश्चरति, उस भाव के अनुरूप जो मुनि चलता है मार्गपात मुनि कथम मुक्तो न भवति, वह कैसा नहीं मुक्त होगा? अर्थात अवश्य मुक्त होगा। इसका जो असौ समस्त शुभाशुभ संकल्प विकल्प रहित जीवस्य शुद्ध भाव, जो जीव का शुभाशुभ संकल्प विकल्प से रहित भाव है वह शुद्ध भाव माना जाता है। सैव निश्चय रत्न त्रयात्मको मोक्ष मार्ग, वही एकमात्र निश्चय रत्न त्रयात्मक मोक्ष मार्ग माना गया। यह तस्मात् जो से शुद्धात्म परिणामात् मुनि च्युतो भवति, उसी शुद्धात्म परिणाम से मुनि च्युत हो जाता है, सकथम मोक्षम न लभते, वह मोक्ष को क्यों नहीं प्राप्त होगा? शुद्धात्म परिणामात मुनि च्युतो भवति। अच्छा, जो शुद्धात्म परिणाम से मुनि च्युत हो जाता है तो वह कैसे मोक्ष को प्राप्त होगा? अर्थात प्राप्त नहीं होगा। अत्र येन कारणेन निःशुद्धात्मानुभूति परिणाम एव, इसलिए जिस कारण से निःशुद्धात्मानुभूति परिणाम ही मोक्ष का मार्ग है, तेन कारणेन मोक्षार्जना सैव निरंतरं कर्तव्य तात्पर्य। उसी परिणाम से मोक्ष मार्ग है तो मोक्ष मार्ग के बिना मोक्ष नहीं हो सकता, इसलिए उसी के अनुसार निरंतर निरंतर अपनी भावना करते रहना चाहिए। भावना के लिए कोई दरिद्रता नहीं होना चाहिए। भाव होते नहीं हम क्या करें, होते नहीं, लेकिन भावना तो हो सकती, प्राप्त करने की भावना तो करो। दुनिया के चीजों के बारे में भावना के माध्यम से मन के लड्डू तो खाते रहते हो, लेकिन मोक्ष के बारे में भी तो किया जा सकता, भावना तो कर सकते हैं। यहां तक कहा कि मिथ्या तो गुणस्थान में भी भावना की जा सकती है, तो समय प्राप्त, जब होना ही होना होगा तो फिर तो ठीक है, वो हो ही नहीं फिर दरिद्रता क्यों है? करने की योग्यता यदि है, थोड़ी बहुत है पुरुषार्थ की, यदि आपकी दृष्टि में कुछ भूमिका है, तो आप इस दुनिया के पदार्थों के बारे में जब पुरुषार्थ कर सकते हैं बुद्धिपूर्वक, पूछ लेना कि हम चाहते तो है नहीं फिर भी उसी ओर जा रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता। जब उस ओर नहीं जा सकता है बुद्धिपूर्वक, भावना की जा सकती है, तो निश्चित रूप से सम्यक दर्शन के भी, ज्ञान के भी, सम्यक चारित्र के भी, अभेद के भी, भेद के भी, रसत्व के भी, सभी प्रकार की भावना की जा सकती है। इतना अवश्य है कि बार बार कहने के उपरांत भी एकाध बार की भावना हो सकती है। महंगाई तो है, निश्चित बात है, इसमें कोई वादा नहीं। महंगाई तो ऐसी दुर्लभ जो चीज होगी उसके लिए जितना मांग करोगे उतने जो है कम ही मात्रा में मिलती। अब सोने की कीमत क्यों बढ़ रही है? तो सोने चाहते हैं इसलिए सोने की कीमत बढ़ रही है। अब यदि मान लीजिए अभी कह दे अखबार में आ जाए जिसके पास सोना रहेगा वह बिल्कुल ही खतरे में होगा, तो बिल्कुल लोहे के टुकड़े के समान बाहर आ जाएंगे। जहां पर अहम इंद्र है वहां पर इंद्र की कोई व्यवस्था विशेष, सजे रही थे। और 16 सर्ग तक देख लो, इंद्र की सीट कहां पर? 16 ही तो है, 12 ही तो है, नहीं वो पूरी पूरी सर्वज्ञ हो जाए तो फिर ज्ञान की कोई कीमत नहीं। सब अहमिंद्र अहमिंद्र बन जाए तो कोई इंद्र की कोई कीमत नहीं, सब अहमिंद्र है। दुर्लभता जहां रहती है, तारतम्य जहां रहता है, वहीं पर ये सारे सारे बातें होती हैं। तो जब विपरीत दिशा में भावना की जा सकती है, करते हैं, जाते न एक में कर जाते हैं, तो सन्मार्ग पर भी हम कर सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं। लेकिन करना तो हम चाहते हैं, लेकिन होती नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं, इसमें भी तो कम से कम भावना ही तो हो गई। भावना नहीं हो पा रही कोई बात नहीं, लेकिन भावना करने की इच्छा तो है, इतना तो कम से कम करो। इच्छा होने के उपरांत भावना अवश्य ही लगेगी। करिए आप, धरित्रता नहीं रखना चाहिए है? शुद्ध भाव में भावना हो सकती है, शुद्ध में भावना, शुद्ध भाव कारण शुद्ध में हो गए ना, भाव शुद्ध वहां पर हो जाए तो इसे आए क्यों इधर बैठे रहे? काये को संयम रागे हाँ, शिव साधन करते नहीं। हाँ, कर्म का उदय भी थोड़ा अपना काम करता है, ऐसा नहीं, लेकिन आचार्य ने ये कहा कि कर्म के जैसे कर्म का अनुभाग का उदय आता, उसी प्रकार पुनः उसी प्रकार के भाव बने, ऐसा नियम नहीं है। सर्वा सिद्धि की आदि किताब में देख लो, ऐसा क्यों नहीं होता? उनका ये कहना कि पुण्य के उदय के कारण पुण्य भाव नहीं होते और पाप के उदय के कारण पाप भाव नहीं होते, किंतु योग प्रवृत्ति के कारण भाव होता है। और योग भी इसी में कहा, समझ लो अशुभ कर्म का उदय हो तो अशुभ योग होगा, ऐसा है ही नहीं। अशुभ कर्म का उदय हो गया इसलिए अशुभ योग हो गया, शुभ कर्म का उदय है इसलिए शुभ योग हो गया, ऐसा नहीं है। क्योंकि सप्तम गुणस्थान से तो नियम से शुभ का ही बंद होता है, साता विधि का बंद होता है, और उदय भले ही असाता का रह सकता, सादे धर्म हुआ। इसे स्पष्ट है कि कर्म के उदय के अनुरूप ही योग होता है, ऐसा कोई नियम नहीं है। और जितना अंश में अनुभाग का बंद हुआ है और वो उदय में आ रहा है, उतना ही ज्यादातर बंद हो, ऐसा सही नहीं। तो कैसा करेंगे? इसीलिए पुरुषार्थ की भूमिका ये है कि आप माना खाए पापी देशे गच्छ किम अभी अनुष्ठानम करो तथापि चित्त शुद्ध शुद्धम बिना मोक्षो न अस्ति इति प्रकटयते। कहाँ जाना चाहते हो? कहीं भी जाओ, क्या करना चाहते हो? कुछ भी करो, हम कुछ नहीं जानते। चित्त शुद्धि पहले करो, जाओ कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब ये है कि चित्त शुद्धि के बिना मोक्ष नहीं है, इसको ठान लो। जहि भावै तहि जाहि जिय, जम भावै करितम जिय, के मै मोक्षो न अति पर, चेत शुद्धि न जम जिय। यत्र भाति तत्र याहि, जहां अच्छा लगता वहां जाओ, यत्र भाति तत् कुरु, जो अच्छा लगता वो करो। कथम मोक्ष नास्ते, इससे भी किसी प्रकार से मोक्ष नहीं। परम चित्त शुद्धि न यदि, यदि चित्त की शुद्धि नहीं है तो कहीं भी कैसे भी करो। जाय भाव इत्यादि, यत्र देशे प्रतिभाति तत्र गच्छ, जिस देश में अच्छा लगता वहां जाओ। हे देव, यद अनुष्ठान प्रतिपादित तत्कुरु, जो अच्छा लगता वो करो। बिल्कुल स्वतंत्रता दे दिया है तो है, लेकिन शर्त क्या रखते हैं? देखो तुम्हें क्या अच्छा लगता वो कर लो, जहां अच्छा लगता वहां पर चले जाओ, जैसे चाहो वैसे कर लो, है कथा मत की ना तो कार्य ना मोक्ष न कुछ भी करो तुम मोक्ष मिलने वाला नहीं है। क्यों? चित्त की शुद्धि नहीं होने की धारणा यत्र तत्र भटकता भटकता चला गया, जो कुछ भी अनुष्ठान करना प्रारंभ कर लिया। अच्छा कहते कुछ भी करो निश्चित रूप से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। मुक्ति यदि मिलेगी तो चित्त शुद्धि एव चित्त शुद्धि होना आवश्यक है। मोक्ष नास्ते परम परम निवीन कस्मात् चित्त शुद्धि न यस्मादेव कारण चित्त शुद्धि तुम्हारी नहीं है तो कुछ भी आप करो कहीं भी आप जाओ वो नहीं। जाति पूजा लाभ दृष्ट श्रोत अनुभूत भोग आकांक्षा रूप दुर्ध्या नहीं। ख्याति है पूजा है लाभ है दृष्ट है श्रुत है अनुभूत भोग आकांक्षा रूप जो कोई भी भाग है दुर्ध्यानात्मक माने जाते हैं। उनके द्वारा शुद्धात्मानुभूति प्रतिपक्ष भूत शुद्धात्मानुभूति के प्रतिपक्ष भूत ये दुर्ध्यान है। यावत कालम चित्तम रंजितम जब तक इनसे इन विकल्पों से खाते पूजा लाभ से आदिकों से चित्त तुम्हारा अनुरंजित है मैंने दूषित है तब तक मूर्छितम तन्मयम तिष्ठति तावत कालम। रंजित का अर्थ क्या? मूर्छित है तन्मय है इन विकल्पों से संकल्पों से ख्याति पूजा लाभ अधिक से तावत कालम हे जीव उतने काल के लिए हे जीव उतने काल तक हे जीव वाप देशांतरम गच्छ कहीं भी किसी भी चले जाओ किमपि अनुष्ठान करो कुछ भी अनुष्ठान करो तथापि मोक्षो नास्ति फिर भी मोक्ष नहीं है। अत्र काम क्रोधादि भी अपत्याने जीवो भोगानुभवम विनापि शुद्धात्म भावना चित सन भावेन कर्माणि बतनाते। देखो भोग का अनुभव भी करे ऐसा कोई नियम नहीं। काम क्रोधादि अपत्यान हुआ ही नहीं बिना भोगो भोग के भी इस जीव का शुद्धात्मा अनुभव शुद्धात्म भावना से चुत होना अनिवार्य है। और जो भाव हुआ शुद्ध भाव उसके द्वारा कर्म बनता ही रहता है। इसलिए ये चित्त जाल जो है इनको तोड़ो बदनादेन कारण निरंतरम चित्त शुद्धि कर्तव्य। इसलिए उन विकल्पों से संकल्पों से अशुद्ध भावों से अपने आत्मा की शुद्धि हमेशा करते रहने जाता तो उससे दूर रहना चाहिए। यदि दूर नहीं रहेंगे तो निश्चित रूप से आत्मा को कर्मबंध नहीं छूटेगा। तथा उत्तम कंकित कलुषित बोधो अंकित कलुषित बोधो काम भोगे मुच्छितो जीवो नविगुंजन्तो भोगे बंदति भावेन कम्माणि। जो आकांक्षा कलुषित भाव रखता है काम भोगों के द्वारा मूर्छित हुआ जीव नविगुंजन्तो भोगे भोगों को वह नहीं भोगता हुआ भी बंद भावीन कम्मानी भावों के द्वारा कर्म बंधु निरंतर होता ही रहता है। ये कहा था ना अस्पृश्यमान एक शब्द आया था अस्पृश्यमान अनतिस्पृश्यमान कि पापान बंदी पुण्य है पाप प्रत्यय। उन्होंने कहा कि अध्यान अति अनतिस्पर्श छूने के भी योग्य नहीं। कौन से भगवान तो जो धनत्र के भी जानते हैं जाते हैं उनके पास इस प्रकार का पुण्य रहता है जो पाप से ही युक्त रहता जो कि पापानुबंधी पुण्य छूने लायक तक नहीं क्योंकि उसके परिणाम ये होते। इसी प्रकार का कि निबोध पर्याय के लिए भी इसी प्रकार का उन्होंने पाप माना जो कि इस प्रकार का निकृष्ट पाप हो जाता तो निबोध यात्रा को प्राप्त कर लेता है। ये गाथा थे ना अति कलुषित भाव के द्वारा निबोध आसम न मुंचन्ते भाव कलंक पौरा हाँ भाव कलंक प्रचुर होता है इसलिए निबोध वास को वह नहीं छोड़ता। वैसे देखा जाए तो निगोद में पाप भी विशेष नहीं रहना चाहिए, लेकिन उस अलग क्वालिटी का वह पाप रहता है, निगोद वास को वह छोड़ ही नहीं सकता। नारकियों से भी, नारकी भी निश्चित रूप से पंचेंद्रिय गर्भज ही बनेंगे और कर्म भूमि में ही उनको जन्म मिलेगा, भूमि में नहीं, अन्यत्र उनका अन्यत्र नहीं जाएगा, एक इंद्रिय इत्यादि नहीं जाएगा। असंगी पंचेंद्रिय नरक जा सकता है, लेकिन नरक से आया हुआ असंगी पंचेंद्रिय नहीं होगा। हाँ,
ये निश्चित है, देवों में भी कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके
इसी प्रकार की स्थिति है। तो भाव कलंक होगा, ऐसा कलंक रहता है जो निगोद वासम न मुझे एक नरक जाने के बारे में मुनियों के दो एक्सेप्शन मिलेंगे, मतलब व्रत रहते हैं इसलिए नहीं जा पाएंगे, लेकिन आचार्य कहते हैं इस प्रकार के यदि परिग्रह इत्यादि रखेंगे तो कुनकुंद आचार्य कहते हैं कौन से मोक्ष पौड़ में वह निगोद पर्याय को भी प्राप्त कर लेंगे। गाथा आती भाव पाउड या मोक्ष पाउड में आता है, ये कंक कलुषित बोधो काम होगे मुच्छदो जीवो नवी भुंजंतो भी भोगे, भोगों को भोगने से ही नरक निगोद इत्यादि चले जाते हैं ऐसा नहीं। तंदुल मच से जो होते हैं वो तो कुछ खाते पीते तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन भावों के द्वारा तो खाते रहते हैं। नवी भुंजंतो भोगे बंद जवाब कम्बानी अत शुभा शुभ शुद्धो उपयोग त्रयम कथयती, शुभोपयोग अशुभोपयोग शुद्धोपयोग का कथन किया जाता है। स्वपरिणामी स्वपरिणामी दम पर असुए हो अहम दोहिर ए विवाज्यो सुदण वंदैकम्। शुभ परिणाम के द्वारा धर्म होता है यानी शुभोपयोग होता है, अशुभ के द्वारा अधर्म होता है, और द्वाभ्याम एताभ्याम विवर्जित धर्म से और अधर्म से जो वर्जित होगा शुद्धो न बदनाति कर्म वह शुद्ध उपयोग बंधु प्राप्त नहीं होता है। सुह पद खंडना रूपे व्याख्यान क्रिय थे, शुभ परिणाम धर्म पुण्यम भवती मुख्य वृत्त्या। देखो मुख्य वृत्त्या, शुभ परिणाम के द्वारा धर्म इन्हें पुण्य बंध होता मुख्य रूप से, माने एकांत रूप से वो ही होता ऐसा नहीं, पाप का क्षय भी होता। असुए हो अशुभ परिणाम भवत्यधर्म पापम, अशुभ परिणाम के द्वारा अधर्म ही होता पाप ही होता है। स्वाभ्याम एताभ्याम शुभाशुभ परिणामाभ्याम इन दोनों शुभ और अशुभ परिणामों के द्वारा विवर्जित जो रहित होता कोसो शुद्ध इच्छा दुरागादि रहित परिणाम तत्परिणत पुरुषो वा मिथ्या से रागादिक से रहित जो परिणाम अथवा उस परिणाम से परिणत पुरुष ही शुद्धोपयोग होता किम करोति न बदना बंद नहीं करता किम ज्ञानावरणादि कर्म ज्ञानावरणादि आठोग्राम बंद कर्म की व्यवस्था तो आप जानते ही हैं, प्रथम गुणस्थान से लेकर के कहां तक दसवें गुणस्थान तक ज्ञानावरणादि आठ कर्मों का बंद होता रहता है। फिर इसके उपरांत कोई अपने अपने भूमिका के अनुसार ये तो होता रहता है, लेकिन आदि लगा दिए ना उसे निरंतर थोड़ी होता रहता है। अभी आयु कर्म के बीच में कुछ छोड़ दो ऐसा, आयु कर्म को छोड़ दो, नवे गुण स्थान में जाकर के दस गुण स्थान जाकर मोह को छोड़ दो, ये होते हैं इतने तो आप जानते ही। अब इसके उपरांत ग्यारहवें बारहवें और तेरहवें गुण स्थान में साता का जो बंद होता वो बंद नहीं होता, वह तो केवल आश्रव जैसे एरापत आश्रव होता प्रकृति और प्रदेश में आ जाता, स्थिति एक समय की पड़ती है अनुभव उतने में जो कुछ मिलेगा मिलेगा, आया आया और चला गया, टिकता ही नहीं। पनाल पर वर्षा होती है तो होती है और वह होती है नीचे चली जाती है, गड्ढा हो कहीं भी रुकने के लिए आंगन में जाकर के पानी रुक जाता, इस प्रकार होता रहता, इसलिए मिथ्यात्व अगाधि परिणाम से रहित जब परिणाम हो जाता उस समय शुद्धोपयोगी बंद नहीं करता, इसे स्पष्ट होता है। दसवें गुणस्थान तक शुद्धोपयोग के साथ भी बंद हुआ करता है। उन व्यक्तियों के लिए यह भी सोचना चाहिए कि एकांत रूप से शुद्धोपयोग होता उसके साथ शुभोपयोग जो रहता है उसके तरह बंद होता है, ऐसा नहीं। एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकते हैं। विवर्जित कहा है, विवर्जित कहा ना, तो उसमें जगन मध्यम उत्कृष्ट बोध कर लिया जाता है। जगन मध्यम उत्कृष्ट दो शुद्धोपयोग के तीन भेद कर लेंगे तो अपने आप ही होता जाएगा, लेकिन उपयोग एक साथ दो नहीं हो सकते, ये कहना का। लेकिन मानते हैं कुछ लोग, जो मानते हैं वह आगम में कहीं लिखा नहीं कि दो उपयोग होते हैं। दो कार्य तो संभव हो सकते हैं, बंद होना और संवर होना दोनों तो हो सकते हैं, लेकिन बंद हो रहा है इसलिए वहां पर शुभोपयोग है और संवर हो रहा है इसलिए वहां पर शुद्धोपयोग है, ऐसे कहेंगे तो तृतीय गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग सिद्ध कर देंगे। ऐसा नहीं होता, द्वितीय गुणस्थान में भी शुद्धोपयोग सिद्ध कर देंगे, क्योंकि वहां पर है ही नहीं, आश्रम नहीं हो रहा, कुछ हो रहा तो कुछ हो रहा होगा, तो अन्य किसी का प्रयोग है, वो संवर तो हो ही रहा, 16 का तो संवर होता ही है, ये संवर हो रहा तो वहां पर शुद्धोपयोग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। उपयोग एक समय में एक ही होता है, कार्य भले ही दो हो सकते हैं। ज्ञानावरण सत्यता कृष्ण उपाधि पीतोपाधि स्फटिक वत अयम आत्मा क्रमेण शुभ शुभ शुद्धोपयोग रूपेण परिणमत्रयम परिणमति। देखो तीन प्रकार की उपाधियां हो गई, अशुभोपयोग शुभोपयोग और शुद्धोपयोग। उपयोग की तीन परिणति कैसी हो गई, एक स्फटिक मणि है उसके सामने उसकी उपाधि क्या हो, एक की है कृष्ण है, काला कोई पदार्थ उसके सामने रख दिया तो वह स्फटिक मणि काली हो जाएगी, ये अशुभोपयोग के लिए इन्होंने उदाहरण दिया। पीत एक पीला कोई फूल रख दिया उसके सामने तो वह स्फटिक मणि पीली हो जाएगी, ये तो हो गया शुभोपयोग के लिए उदाहरण। फिर इसके उपरांत कौन से उपाधि तो रख के स्फटिक वत कहा, अब अशुद्धोपयोग के लिए इन्होंने स्फटिक मणि का पूर्ण श्वेत वर्ण का माना है, वहां पर किसी प्रकार की उपाधि नहीं रहती, कर्मों के भाव उसमें अर्जित नहीं होते। क्रमेण शुभाशुभ शुद्धोपयोग रूपेण परिणाम प्रेम परिणाम तेन तो मिथ्यात् विषय कषायादि अवलंबनेन पापं बध्नाति। मिथ्यात् का विषय कषाय का यदि आलंबन ले लेते हैं तो पाप का बंद होता है। अरत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु गुण स्मरण दान पूजा दिना संसार के छेद पूर्वकम। तीर्थकर नाम कर्म आदि विशिष्ट गुण पुण्य अनिहित प्रत्यापद नाती। अर्थ भगवान के चित्त परमेष्टि के उपाध्याय परमेष्टि आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि इनके गुण स्मरण करना आदि आदि कार्य, दान देना पूजा करना आदि आदि जितने भी है संसार की स्थिति के छेद पूर्वक, ये संसार की स्थिति छेद भी हो रहा लेकिन उसके साथ साथ तीर्थकर आदि विशेष विशेष कर्मों का बंद भी होता है। जो अनिहित वृत्तिया वो नहीं चाहते हमें तीर्थकर पद मिल जाए, हमें गणधर परमेष्टि के योग की जो पद मिले योग कर्म बन जाए, हम बलदेव बन जाए, आज भी बन जाए तो कुछ नहीं, वो चाहते नहीं, लेकिन फिर भी नहीं चाहते हुए भी उसके साथ साथ इस प्रकार के पुण्य बंद कर्म बंद होता है। संसार की स्थिति तो निरंतर टूट ही रही है, छूट ही रही है, उसकी कट रही है। अनिहित वृत्तिया शुद्ध किसके प्रति अनिहित वृत्तिया, उन कर्मों के प्रति कोई यह नहीं है, लेकिन भक्ति भाव तो पंच परमेष्टि का वो कर रहे हैं। भक्ति भाव के प्रति कुछ लोग कह रहे थे भक्ति भाव को हम हे मां हे जान करके करते हैं, ऐसा नहीं, हे जान करके जो भक्ति भाव करेगा उसके लिए तीर्थकर आदि विशिष्ट पुण्य कर्म का बंध तीन काल में नहीं होगा, बल्कि क्षय सम्यक दृष्टि होता हुआ भी तीर्थकर प्रकृति का बंध कर सकता और नहीं भी कर सकता, और सौक्ष्म संवेदन वाला कर लेगा। क्यों कर लेगा? विशेष रूप से भाव करता रहता, भक्ति करता रहता, चारित्र इत्यादि का पालन करता रहता, दानादि काम करता रहता है करके, अथवा इन कर्म जो बनेगा उनकी फल भी मुझे नहीं चाहिए, ऐसे कह करके जो कार्य भक्ति करता है उसके लिए चीतकदादी प्रकृतियों का बंद होता और साथ साथ संसार की स्थिति का छेदन भी होता है। वो यही है, यहाँ पर उठाने का मैं भी देखो पहले शुभ और अशुभ शुभ दो भी नहीं, मतलब संधि के अपेक्षा से कर दिया, इतना तो इतने तो पढ़ चुके हैं, ये आगे जाकर ये कहेंगे जो कोई भी हमारे क्रम के बारे में, समाज के बारे में, संधि के बारे में जो कुछ भी काम होगा वह आप लोगों के लिए पूरी पूरी सुविधा के लिए दिया गया है, इतना ध्यान रखो। इतना तो नहीं जानते क्या वो भी? हाँ अच्छा रहता, कोई बात नहीं, इसलिए तो आप समझ आ रहे, इसलिए समझ नहीं ना कि अब शुभोपयोग को यदि कार्य कहना चाहो तो कह दो, भीतर भाव को पूछ लेना। यहाँ पर व्याकरण का और समाज का कार्य नहीं चल रहा, उस उद्देश्य नहीं जाना चाहिए था आपको, पहले ही कहा है। अच्छा चलो, संसार शुद्धात्मावलंबनेन शुद्धोपयोगेन तु केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूपं मोक्षं च लभते इति। शुद्धात्मा के अवलंबन से, अवलंबन लेने से शुद्धोपयोग के साथ ही केवल ज्ञानादि अनंत गुण रूप मोक्ष को वह प्राप्त करता है। अत्र उपयोग त्रय मध्ये मुख्य प्रत्यय शुद्धोपयोग एव उपादे इति अभिप्राय। अब यहाँ पर तीन उपयोगों में से मुख्य रूप से शुद्धोपयोग ही उपाधि है यह अभिप्राय। एवं एक चत्वारिंशत् सूत्र प्रमित महास्थल मध्ये, इस प्रकार 41 सूत्रों प्रमाण यह महास्थल में सूत्र पंच के पांच सूत्रों के द्वारा शुद्धोपयोग व्याख्यान मुख्यत्व शुद्धोपयोग के व्याख्यान की मुख्यता को लेकर प्रथम अंतरस्थल प्रथम अंतरस्थल समाप्त हुआ। अतः ऊर्ध्वं तस्मिन् एव महास्थल मध्ये, अब इसके आगे महास्थल में पंचदश सूत्र पर्यंतम 15 सूत्रों तक वीतराग स्वसंवेदन ज्ञानी मुख्यत्वेन व्याख्यान, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान कौन होता है, कौन धारण करता है ये बताया जा रहा है। कई बार बता भी दिया है और भी बता देंगे, यहाँ पर प्रसंग आने देंगे। दानिं लब्धैवो उपर इन्द तनुवितवे जम्मन मरण विवर्जयमु पौलब्धैनानि। दान के द्वारा भोग प्राप्त होते हैं, तप के द्वारा इंद्रत्व प्राप्त होता है, और ज्ञान के द्वारा जन्म मरण रहित हो करके अनंत पद प्राप्त होता है। कौन सा चाहिए? सामान्य रूप से ये कहा जा रहा है तप के द्वारा इंद्रत्व मिल जाए, हम तो तप ही करेंगे, लेकिन इंद्रत्व मिलना चाहिए कौन से? हमें अनिंद्र भी नहीं चाहिए, हाँ तो धर्मेंद्र चाहिए, कम भी उम्र है और निश्चित तो हो ही जाता है, एक चरण शरीर तो हो ही जाता है, वो तीर्थंकरों के मेल मिल जाएंगे हैं? तप के द्वारा हो सकता है ना, ये लिखा है यहाँ पर। सामान्य रूप से ये कहा जा रहा है तप के द्वारा इंद्रत्व मिल जाए, हम तो तप ही करेंगे, लेकिन इंद्रत्व मिलना चाहिए कौन से? हमें इंद्र भी नहीं चाहिए, हाँ तो धर्मेंद्र चाहिए, कम भी उम्र है और निश्चित तो हो ही जाता है, एक चरण शरीर तो हो ही जाता है, वो तीर्थंकरों के मेल मिल जाएंगे हैं? तप के द्वारा हो सकता है ना, ये लिखा है यहां पर। लेकिन ये सामान्य रूप ही कहा गया है। ध्यान रखना कि तप के माध्यम से इंद्रत्व सबको मिलने लग जाए तो तपने लग जाए अभी से सब लोग। नहीं मिले नहीं कह रहा हूं, हम ये कह रहे हैं कि तप के द्वारा यदि इंद्रत्व मिलता है तो ये कॉमन शब्द कहा गया। हाँ सामान्य कथन है, जैसे स्वाध्याय से परम निर्जरा होती है, लेकिन स्वाध्याय से आज तक केश को केवल ज्ञान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ध्यान के द्वारा ही होगा, लेकिन ध्यान में जिसको मन नहीं लग रहा है और इधर उधर उछल कूद मचा रहा है मन, तो उसके लिए कहा जा रहा है कि एक किताब को लेकर के बैठ जाओ। स्वाध्याय परम तप कहा, स्वाध्याय को यदि परम तप कह देते तो फिर ध्यान परम तप नहीं हुआ। ऐसा है नहीं, तप का उपसमार ध्यान में होता, प्रसंग को लेकर के कहा गया। दान के द्वारा भोग प्राप्त होता है और इंद्रत्व प्राप्त होता है तप के द्वारा, जन्म जरा मृत्यु से रहित पद प्राप्त होता है ज्ञान के द्वारा, यानी ज्ञान व जो ध्यान के द्वारा। बिल्कुल हाँ, यदि पूरी नहीं करता है, ये यहां पर प्रसंग है। तप के द्वारा तप वह, अब हम ये कह देंगे जो बारहवा तप है वो तप कर दे, देखेंगे कैसा हो जाता है, इंद्रत्व पद मिलता, इंद्र भी आकर करके पदों में मिल रह जाएगा। लेकिन तप करते हुए भी वह अधूरा तप रह जाता है तो उसके लिए इंद्रत्व की प्राप्ति कहा तप के साथ। दाने लभ्यते पंचेन्द्रिय भोग, दान के द्वारा पंचेन्द्रिय भोग प्राप्त होता है नियमेन नियम से, और इंद्रत्व अपि तपसा लभ्यते, इंद्रत्व जो तप के द्वारा प्राप्त होता है। जन्म मरण विवर्जितम पदम स्थानम लभ्यते प्राप्यते केन विश्रास्त समिन्द्र ज्ञानेन इति, किंतु जन्म जरा मृत्यु से रहित जो पद है वह प्राप्त होता है विश्रास्त समिन्द्र ज्ञान के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं, स्वसमिन्द्र के द्वारा नहीं, क्यों सर्वेषाम आएगा ये आहार भय भेषज शास्त्र दानेन, आहार दान अभय दान औषध दान शास्त्र दान के द्वारा सम्यक रहितेन, सम्यक सहित रहित होता रहा तो भोगो लभ्यते, केवल भोग मिलते हैं सम्यक सहित है तो, और सम्यक सहित यदि इन चार दानों को करता है तो परंपरा निर्वाणम लभ्यते, परंपरा से निर्वाण प्राप्त होता है। इसलिए कुछ लोग तो ये ठान ही लिया अब तो हमें कुछ करना है कुछ नहीं ना, हमारे तो सच्चे देव गुरु शास्त्र प्रति विश्वास है आस्था है, हमें तो खूब दान देना है और अपना काम जो निश्चित रूप से महाराज आप ही कहाँ जाएंगे, पहले ज्यादा तो जा नहीं सकेंगे, ज्यादा ज्यादा सुबह सुबह तक हम भी उतरे आ सकते हैं पीछे पीछे क्यों, हम तो लगे निश्चित बात है। फिर इसके उपरांत आपको भी एक भाव तो लेना ही पड़ेगा, हम तो आपके साथ आ जाए, कहाँ जाएंगे आप नहीं सकते हैं, फिर देने के लिए आ जाएंगे, बिल्कुल देंगे फिर बाद में लेंगे फिर चले जाएंगे, है देते यहीं पर नहीं मिलेंगे, मतलब सम्यक दर्शन जो है केवल ऐसा नहीं करता, सम्यक दर्शन यदि है छूटता नहीं है तो गृहस्थाश्रम में आने के उपरांत वह निश्चित रूप से संयम तो लेगा ही, इतना बस। ऐसे भी बैठे होंगे जब तक चाहे सम्य दर्शन नहीं हो तब तक लिए हम संयुक्त सम्य दर्शन के साथ ही ताना जी करते करते काम करेंगे, ठीक है इसकी भावना भी होनी चाहिए, ऐसे ही होनी चाहिए। अंतर तो नहीं निश्चित पुण्य बंद पुण्य जो सम्यक दर्शन के साथ होता पापा ने बंद पुण्य जो होता वह केवल विषय निर्वाणम लगते, तथापि विविध अद्भुतय रूप पंचेन्द्रिय भोग एव, फिर भी वह परंपरा से होता इसलिए पंचेन्द्रिय का भोग ही नियम रूप से उनको विशेष रूप से प्राप्त होता। सम्यक सहित तपसा च यद्यपि निर्वाणम लगते, सम्यक दर्शन के तप के साथ देखो यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति होती है, तथापि देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूति पूर्वक एव, देवेंद्र चक्रवर्ती इत्यादि विभूति पूर्वक ही वह प्राप्त होती है डायरेक्ट नहीं, किंतु वीतराशो संवेदन के द्वारा। देखो अब ये नकुल और सहदेव इन दोनों ने तप किए, सर्वा शक्ति मिलेगी, नीचे आएंगे और जो है चक्रवर्ती इत्यादि होंगे फिर बाद में चले जाएंगे, और पांडव उनके लिए क्या हुआ डायरेक्ट मिल गया क्योंकि उन्होंने तप नहीं किया, फिर क्या किया वीतराशो संवेदन ज्ञान साक्षात वीतराय स्वसंवेदन ज्ञान सम्यक ज्ञानेन सविकल्पेन, यद्यपि देवेंद्र चक्रवर्ती आदि विभूति विशेषो भवति सविकल्प अवस्था के साथ तो या देवेंद्र चक्रवर्ती आदि पद मिल जाते हैं, तथापि निर्विकल्पी ने मोक्ष एव निर्विकल्प संबंधन ज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त। प्रभाकर भट्टा क्या कहते हैं, हे भगवान यदि विज्ञान मात्र ने मोक्ष बहुती। हाँ अब आगे जो स्वाध्याय 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 विज्ञान मात्र से मुक्त होता है तो क्या है बताओ। हे भगवान नहीं कहेंगे, हे भगवान कहेंगे, जैसे हिंदी है ये भी ठीक है। हे भगवान समझ में आना चाहिए भगवान आत्मा को। हे भगवान, हे भगवान संस्कृत में हे भगवान होता है, हे भगवान, लेकिन फिर भी हम लोगों को समझाने के बीच आते आचार्य महोदय हे भगवान ये कह रहे हैं। आप ग्रंथ के साथ चलते महाराज प्राकृत में भी चल जाते, ऐसी बात नहीं बिल्कुल। हे भगवान यदि विज्ञान मात्र ने मोक्ष होती, यदि ज्ञान मात्र से विज्ञान मात्र से मोक्ष हो जाता है तरी सांख्यादयो वंदंती वरंती ज्ञान मात्रा देव मोक्ष तेषाम किमति दूषाम देते भवत्वी। कि सांख्यादिक के द्वारा भी यही बात कही जाती है ज्ञान मात्र से मुक्ति होती, ज्ञान मात्र से मुक्ति होती, फिर उनका निषेध आप क्यों करते बार बार। और आज तो आपने यूं ही कह दिया ज्ञान न परम मोक्ष, थोड़ा खोल दो बता दो। भगवान आप भगवान बताते क्या अत्र वितराग निर्विकल सुविधन ज्ञानम एव इति भणितम। यहाँ पर केवल ज्ञान विज्ञान की बात नहीं, वितराग निर्विकल स्वसंवेदन सम्यक ज्ञान की बात है। तेन जिससे वितराग विशेषण, वितराग विशेष से क्या हुआ केवल सम्यक ज्ञान नहीं आगा किंतु चारित्र लभ्यते। वितराग कहने से चारित्र की भी उसके साथ संयोजना है और सम्यक विशेषण सम्यक को अभी लभ्यते। और सम्यक ये विशेषण लगने से कि सम्यक दर्शन का भी यहाँ पर अवसर आ जाता है। पानकवत एकस्यापि मध्ये त्रयमस्ति, जैसे शरबत वगैरह बना देते हैं पानक में ठंडाई वगैरह बना देते हैं तो उसमें क्या दो दो तीन तीन चीजें रखी जाती हैं, लेकिन कहने में एक ही वचन में आ जाता है पानक ले आओ ठंडक ले आओ ठंडाई ले आओ, ऐसा कहा जाता। तेषां मध्ये तो वितराग विशेषणम नास्ति, उनके यहाँ वितराग विशेषण नहीं लगाया गया है। सम्यक विशेषण उनसे नास्ति, सम्यक विशेषण भी नहीं गया किंतु प्रकृति प्रचयोर यद भेद विज्ञानम मुक्ते कारणम। बस प्रकृति और पुरुष, पुरुष मैंने आत्मा प्रकृति मैंने शरीर, इन दोनों में जो भेद विज्ञान है वो उसी के द्वारा केवल ज्ञान हो जाता है ऐसा माना गया। राग से रहित होना, राग कषाय का प्रतीक है, कषाय से रहित होना चारित्र है, क्योंकि चारित्र पणि निबद्धम कषायम जनवरे पणियम परिकयम तत्सोदयन जीवो अचरितो विनायक। बिल्कुल चारित्र कहते ही कषाय का उदय का अभाव बताया गया और कषाय जो ही आ गए वहां पर चारित्र का अभाव बताया गया, इसीलिए यहाँ पर वितराग कहने से चारित्र का संबंध होता, स्वसंवेदन सम्यक कहने से सम्यक दर्शन का ग्रहण होता है और ज्ञान से सम्यक दर्शन। नास्ति ज्ञान मात्रमेव, किंतु ज्ञान मात्र का यहाँ पर कथन नहीं किया गया, तेन दूषण बहुत ही भाव आता है, इसलिए सांख्यादिकों के द्वारा जो ज्ञान स्वीकृत है केवल ज्ञान के लिए कारण है वह ज्ञान यहाँ पर दूषित किया गया। लेकिन सविकल्प के साथ था ना, है कैसे हुआ? हाँ इसके बारे में हमें तो यही समझ में आ जाता है छाय समय दर्शन उनके साथ होना चाहिए, कहीं शचि के लिए अच्छा हम तो शचि पति की बात शचि के लिए एक भाव ऐसा रहता है जैसे 123 जीव 123 जीव भारत खंड से विदेश पहुंचेंगे और विदेश में जाकर के 8 साल अंतर मौत के बाद ही उन्हें संयम के माध्यम से केवल ज्ञान उत्पन्न होगा। वो भद्र मिथ्या दृष्टि होते मिथ्या दृष्टि, क्योंकि मनुष्य मनुष्य होगा तो मिथ्या दृष्टि होगा। अब कौन सी ऐसी भावना है उनकी कि वह मिथ्यात्व से ही लेकर के चले गए यहाँ पर, वहां पर जाने के उपरांत अब मिथ्यात्व के साथ चले गए हैं तो कम से कम वह जन्म लेने के उपरांत 8 वर्ष तो होना ही चाहिए, तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। वहां पर भी 8 वर्ष तक मिथ्या दर्शन में ही रह गए और यहां से भी गए, फिर भी उन्हें एक अंतर मुहूर्त 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान उत्पन्न होकर के वो निर्वाण को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा वर्णन आ जाता। अल्प काल में वो मुनि दीक्षा लेकर के चले जाते हैं। कौन सा ऐसा सब किया, भावों का खेल बहुत विस्तृत है। इसी प्रकार शशि के मन में यह भावना हो सकती है कि पूर्व जीवन में उन्होंने तीर्थंकरों के लिए सुनने में तो यह था, तीर्थंकरों के बारे में वो बहुत आकुलित रहती कि हम अपने जीवन काल में अच्छे अच्छे पंच कल्याणकों में जाकर के और तीर्थंकरों की सेवा इत्यादि करें। सौधर्मेंद्र और शचि ये दोनों ऐसे हैं संबंधी कि अपने जीवन काल में ये बहुत सारी जन्म कल्याणक और तप कल्याणक आदि मनाते हैं, क्योंकि इनका जो सागरोपम पल्योपम आयु है, शशि की 5 पल की आयु है और यहाँ पर 170 भूमियां हैं, तो जन्म कल्याण एक साथ कितने हो सकते हैं, 170 नहीं होंगे, कितनी कितनी वहां पर पांडुशिलाएं हैं,
चार
है ना, 5 मेरु है, 5 में 4 दिशाओं में 4 हो गया, 5 चौक 20 वहां पर जैस वेट वाली बात नहीं है, तीर्थंकर रुकते नहीं, इसलिए एक साथ 20 जन्म कल्याण। अब देखो 20 का यदि सौभाग्य उसे शशि को मिलता है तो कम से कम 20 रूप तो धारण कर लेगी वो एक साथ करना है, है? पूर्व में क्या किया, भावना तो की होगी, तप से ही काम, देखो ये बात है तप से द्वारा ही काम होता है, ऐसा तो नहीं था, कुछ न कुछ भाव अवश्य होंगे, निगोद से निकल कर आ जाए तो कौन से भाव होंगे उल्लेख नहीं किया जा सकता, किंतु उल्लेख नहीं किया जा रहा इसलिए वह कुछ भाव नहीं है, ऐसा तो है, लोकपाल हो जाते हैं उनके भी एक भावाधार बनते हैं, तो निश्चित है कुछ भावों में ऐसा अतिरिक्त रहता होगा, उसके परिणाम स्वरूप यह है भाव। अपने जीवन काल में इंद्र के जीवन काल में शचि जो होती है वह 40 नील प्रमाण, 40 नील तो बहुत हो गई, वह स्वयं ही शचि अपने पूर्ण काल को करके और नीचे आकर के एक भावधर होती, एक भावधर होती तो वो तो नहीं कर पाए, तीर्थंकर पद नहीं प्राप्त कर सकते, शचि कभी भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सके, वहां से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होगा नहीं, संभव है, इसलिए तो हम ये कह रहे हैं, लेकिन अभी ये नहीं बनाना, हाँ ये तो बनेगी नहीं, क्योंकि उसी भाव से अब निकलना है, अब बन सकता है उसमें कोई बात नहीं, नहीं बन सकता क्यों है, ऐसे नियम थोड़ी, दो भी हो सकते हैं उसमें कोई बात, नीचे आने के बाद, अरे तो 5 कल्याण की बात नहीं कह रहे हैं, थोड़ा सुन तो लो, भरत और ऐरावत में न जा करके विधि इत्यादि में चले जाएंगे, वहां पर 2 भी चल सकते हैं, 3 भी नहीं, 2 चल सकते हैं, 3 की कोई आवश्यक, 2 को हो सकते हैं, मतलब कम से कम 2 भी हो सकते, भिक्षा कल्याण भी नहीं किया और सबको धारण कर लिया, फिर इसके उपरांत तीर्थ प्रकृति का बंद हो गया तो हो गया, तो कोई बात नहीं, अच्छा चलिए, तम एवर तम विपक्ष दूषण द्वारे दृढ़, उसी को हम विपक्ष के लिए दूषण देते हुए दृढ़करण करते हैं, देव निरंजन इयो बनई नानिम मुखन बंद नान बीना देवड़ा सिर संसारु भमन देव निरंजन एवं बनते ऐसे कहते हैं ज्ञानेन मोक्षो न भ्रांति इसमें कोई भ्रमण मत रखो ज्ञान बिना जीवा ज्ञान से दो रहित जीव है वे सिर्फ संसार में भटकते रहते हैं अनंत ज्ञान आदि गुण सहित अष्टादश दोष रहित निरंजन देव अनंत ज्ञान आदि से युक्त और अठारह दोषों से रहित ऐसे निरंजन देव कहते हैं क्या कहते हैं वीतराग निर्विकल्प संवेदन रूपे नहीं सम्यक ज्ञान न मोक्षो भवति राग से रहित विकल्प से रहित स्वसंवेदन ज्ञान के द्वारा ही मोक्ष होता है न भांति संदेह न कर्तव्य संदेह नहीं करना चाहिए पूर्व स्वसंवेदन ज्ञान विहीना जीवा पूर्व में जो कहा गया स्वसंवेदन ज्ञान है उससे रहित जीव चिरम बहुतरम कालम संसारम परिभ्रमन्ति बहुत काल तक संसार में परिभ्रमण करते हैं वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में यद्यपि सम्यक्वादि त्रयम् अस्ति यद्यपि सम्यक्वादि तीनों गर्भित हैं तथापि सम्यक ज्ञान से मुख्यता फिर भी सम्यक ज्ञान की ही मुख्यता यहाँ पर बता दी गई मुख्यता है अर्थात दोनों का अभाव हो गया ऐसा नहीं कभी रहता विवक्ष तो मुख्य इति वचनादिति कहाँ आया विवक्षितो मुख्य इति चितिन्यो गुणो विवक्षो न निरात्मकस्ते तथारि मित्रानुभयादि चक्रद्वयावधि कार्य करम्य वस्तु ऐसा संबंध बुद्ध महाराज ने कहा विवक्षित मुख्य हो जाता है प्रियांशनाथ भगवान की स्तुति करते बिल्कुल ऐसे पक्षपात करने से उनको वीतराग संवेदन ज्ञान प्राप्त नहीं होगा उसी को स्पष्ट कर रहे हैं महाराज नीचे और देख लो पुनर्वितमेव अर्थं दृष्टान्तात् दृष्टान्तिकाभ्याम् निश्चिनोति उसी बात को पुनः दृष्टांत और दृष्टांत इन दोनों के द्वारा निश्चय कराया जा रहा है नान विहीन मोख को जीवम का सुभि को चोई बहुये तलिल विरोलिया गुरुचो पड़ो न हो चिक्कनो न हो ज्ञान विहीन से मोक्ष पदम जीव मां कश्चापि अद्राक्षी क्या काश में जोई ये किसी भी प्रकार से तुम देख नहीं सकोगे ज्ञान से जो विहीन है उसके लिए कभी स्वप्न में भी मोक्ष पद मिल नहीं सकता बहुना तलिल विलोड़ी तेन करह चिक्कनो न होते आहा बहुत अच्छा बहुत पानी के द्वारा यूं हाथ धोते रहो चिकना नहीं होंगे कुछ भी करते रहो आप चिकने नहीं होंगे क्यों अरे तेल थोड़े ही है वो तेल चाहिए एक बूंद भी लगा दो तो चिकनाहट हो जाए समुद्र का जल भी खाली कर दो आप तो भी आपके हाथ चिकने नहीं होंगे भले ही क्षारदार हो सकते ख्याति पूजा लाभादि दुष्ट भाव परिणत चित्तम मम कोपी न जानाति इति मत्वा वीतराग परमानंद एक सुख रसानुभवन रूपम चित्त शुद्धि अकुर्वाणश्च अब देखो ख्याति है पूजा है लाभ है प्रकार के दुष्ट भावों से परिणत जिसका चित्त है और वो क्या सोचता है भीतर मैं क्या सोच रहा हूं किसको मालूम है भीतर क्या जान रहा हूं मैं कुछ नहीं जान सकते ये लोग इस प्रकार समझ करके वह वीतराग परमानंद एक सुतामृत रूप जो चित्त शुद्धि है उस चित्त शुद्धि को नहीं करता हुआ बहिरंग बकवे से न बहिरंग में बगुले के समान वेश धारण करके लोक रंजनम माया तानम लोक रंजन एक सांग पर खड़े हो जाए और माया स्थान को प्राप्त होकर के तदेव शल्यम, वही एकमात्र शल्य को धारण करके तत् प्रवृत्ति समस्त विकल्प कल्लोल माला त्यागे, उससे समस्त विकल्प कल्लोल माला त्यागे निज शुद्धात्म सम्मिति निश्चय सम्यक ज्ञाने सम्यक ज्ञाने बिना मोक्ष पदम स्वरूप है। कल्लोल माला का त्याग किसके द्वारा होता है? सम्यक ज्ञान के द्वारा होता है, निज शुद्धात्मा की सम्मिति के निश्चय से होता है, और वह भी सम्यक ज्ञान के द्वारा ही होता है, इसलिए वह मोक्ष पद को प्राप्त नहीं कर सकेगा। बहिरंग से तप इत्यादि पदे ही करते जीव माँ का जो माँ कच्चा भी अच्छी ही, उसको किसी भी प्रकार से मोक्ष पद नहीं मिलेगा ऐसा जानो। दृष्टान्त मां कि बहुना अपनी शरीर न मचते न गुरु, बहुत हाथ से मलते गए मथन करते गए हाथ, करो हस्त चिकन स्निग्धो न भवती, हाथ कभी भी चिकने नहीं होंगे, यथा बहुतरम अपनी शरीर मचते भी हस्त स्निग्धो न भवती, जिस प्रकार बहुत पानी में हाथ मथन कर लो तो भी स्निग्ध नहीं होता, तथा वीतराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण ने ज्ञाने बिना, वीतराग शुद्धात्मानुभूति लक्षण वाला जो ज्ञान है उससे बिना होना भी तपसा मोक्ष न भवती, बहुत तप कर लो फिर भी मुक्ति नहीं होती ऐसा कहा गया है। कोई बात निश्चय नहीं यन निज आत्मबोध ज्ञान बाह्यम ज्ञानम, निश्चय नहीं की अपेक्षा से निज आत्मा के बोध ज्ञान से बाह्य बोध ज्ञान तीन प्रयोजनम नास्ति। अब निज आत्मा का ज्ञान तो नहीं हुआ और शास्त्रीय ज्ञान तो काफी हो गया, लेकिन उसी ज्ञान से भी कोई प्रयोजन नहीं, ज्ञान करने से कोई इसमें लगने लग जाएगा, अपने को तब छोड़ देना चाहिए क्योंकि तब के द्वारा मुक्ति तो होती नहीं, ज्ञान के द्वारा मुक्ति होती है, इसलिए खूब अच्छे ढंग से शास्त्र पढ़ लेना चाहिए और सब काम करना चाहिए, कहते उससे भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होने वाला। तो लेकिन जहां पर तप है वहां पर भी तीनों है, वहां पर भी तीनों है, इसके साथ यही पर भी और कह रहे हैं, यहाँ पर भी कोई नियम नहीं है। अरे साफ नहीं कह रहे भैया, नीचे देख लो साफ साफ लिखा हुआ प्रयोजन न किससे, उस ज्ञान से भी कोई प्रयोजन नहीं, इति अभिप्राय मनुष्य संप्रदाय सूत्र निगम कथे थे जमनी अबो बाहिर का जुणते दुख कारण दीन तो जीव वो खणे। निज आत्म बोध से जो बाह्यभूत ज्ञान है दुनियादारी का ज्ञान है तेरे न कार्यम, उससे कोई भी प्रयोजन नहीं है। दुखस्य कारणम केन, दुख का ही कारण है वह तप जीवस्य भौतिक क्षण न, वह तप जीव के लिए एक क्षण के लिए तप ही एक प्रकार से दुख का कारण दे देता है। बोला नहीं है? क्या ज्ञानम अपनी तम तेन कार्यम न, ये तो स्पष्ट कर दिए इन्होंने, वह उसके द्वारा भी दुखी होता यूं कह दो, वह भी एक प्रकार का तप ही है, वो भी एक आत्मा को तपाने वाला तप ही है, एक माइंड से करता है, कोई तन से करता है, कोई वचन से करता है, करता तो तीनों तप ही रूप में है। तप मतलब दुख के लिए कारण जो आतप पश्चाताप इत्यादि जो होते हैं उससे मतलब है यहाँ पर तप। जम यत ये है ना, आप बार बार इसलिए कह रहे थे जहां कहीं भी आप लोगों के यहाँ भी एटसेट्रा क्यों लिख देते हैं, एटसेट्रा बोलो जल्दी जल्दी, एटसेट्रा का मतलब क्या होता है, इत्यादि बार बार क्यों लिखते हो? इसीलिए इट इज आल्सो शॉर्ट फॉर प्रारंभ करने के लिए, दान पूजा तपश्चरणादिकम कृत्वा अपि, दान है पूजा है तप है आचरण आदि करते हुए भी दृष्ट श्रुत अनुभूत भोगाकांक्षा वाचित चित्ते न, देखा हुआ सुना हुआ अनुभव में लाया हुआ भोगाकांक्षा से जिनका चित्त रंजित है इसके द्वारा रूप लावण्य सौभाग्य बलदेव आसदेव कामदेव इंद्रादि पद प्राप्ति रूप भावी भोगाकांक्षा करण जन निदान बंध रूप मुझे अच्छा मिले लावण्य मिले सौभाग्य में सौभाग्यशाली हूँ बलदेव हूँ वासुदेव हूँ कामदेव हूँ बोलो इंद्र हूँ इंद्र आदि की प्राप्ति मुझे मिले आदि भावी भोगों के आशा के कारण जो निदान बंध होता तदेव शल्यम यही एकमात्र शल्य है। तत्प्रवृत्ति समस्त मनोरथ विकल्प जाल वली रहितत्वेन इस प्रकार के समस्त मन मनोरथ मन के जो अभिलाषा है उन विकल्प जालों के पंक्तियों से रहित होने से विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निजात्म अवबोधो निजबोध विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला जो निजात्मा है उसका अवबोध मैंने बोध प्राप्त होता तस्मात निजबोधात बाह्यम उस निजबोध से बाह्य बोध शास्त्रादि जनितम ज्ञानम अपि शास्त्रादि से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान है वह भी यत्तेन कार्यम न अस्ति उससे कोई प्रयोजन नहीं है। कस्माचित् कितने हम लोग प्रयास कर रहे हैं रात दिन भावना ये करते हुए हे भगवान शास्त्र का ज्ञान मुझे पूर्ण हो हे भगवान शास्त्र का ज्ञान मुझे पूर्ण हो है जाप कर रहे हैं भगवान से विनती कर रहे हैं और आप कर रहे हैं तेन से केम अपि कार्यम न एक ही पंक्ति में आप लिख दिया हा? मंत्रों की उच्चारण कर रहे हैं सरस्वती की आराधना की जा रही है हैं? क्या है? हाँ बहुत अच्छा तो उनका भी तो तप किया जा रहा है उनका भी अब दुनिया के कामों में तो नहीं लगा वो हमारा उपयोग लगा है हम क्या करें ऐसा कोई कहता तो क्या करोगे कुछ तप की तो आप निंदा करो आलोचना करो तो इस ज्ञान की क्यों नहीं करें जो देखो सड़ल में तो क्या दिलाब को ना अब देखो यहाँ पर केवल मिथ्या चारित्र की तो बात कही जा रही है जो ख्याति चाहता पूजा चाहता लाभ चाहता कोई एक तप के माध्यम से चाहता है तन को तपाता कोई शास्त्र ज्ञान के माध्यम से करता है माता उसका भी गर्म होता होगा दोनों के लेकिन इस छड़ाने की पंक्ति का अर्थ केवल मिथ्या चारित्र की ओर ही जाती है जिसकी दृष्टि में ज्ञान के माध्यम से ख्याति पूजा लाभ की बात रहती है वह भी एक प्रकार से मिथ्या ही ज्ञान माना जाता है वो जब ये है तो वो भी है निश्चित उसके द्वारा मन इतना तपता होगा क्या बताएं बिल्कुल ज्यादा खून खर्च हो जाता है उसमें प्रमत योगा प्राण विप्रपन हिस्सा इसमें भी हो जाता है नहीं ज्यादा जो क्षमता तो है ही नहीं और ज्यादा पड़ जाए तो यूं ही हो जाए फिर तो हो जाए चीटी के समान हो जाते हैं चीटा चीटा तो बड़े रहते शास्त्रादि जनितम ज्ञान अभी यत्न कार्यम निकादित चेत क्यों वो तो बोलते हैं ये कारण तौ वीत्रास संवेदन रहितम तप जीवश्च क्षण मात्रेण कालेन इति दुख में जीव के लिए वह तप स्वसंवेदन ज्ञान से रहित होने के कारण दुख के लिए कारण होता है। अत्र यद्यपि शास्त्र जनितम ज्ञानम स्वशुद्धात्म परिज्ञान रहितम तपश्चरणम च मुख्य प्रत्या पुण्य कारणम भवति यहाँ पर शास्त्र शास्त्र से उत्पन्न हुआ ज्ञान जो कि स्वशुद्धात्म परिज्ञान से रहित है और उसी प्रकार तपश्चरण भी मुख्य रूप से पुण्यबंद का कारण होते हैं दोनों तथापि मुक्ति कारणम न भवति इति अभिप्राय फिर भी मुक्ति का कारण वह नहीं होगा सद्दरी पत्तरी रोचेदी पुनः आचेदी धम्मम भोग निमित्तम प्रदान कर रहा ज्ञान कर रहा प्रतीति कर रहा रुचि कर रहा स्पर्श कर रहा श्रवण कर रहा श्रावण कर रहा सब कुछ कार्य कर रहा लेकिन वह निज बोध से रहित होने के कारण